एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम जिस उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं वो किसी सीधी सपाट सड़क जैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शिकागो की उन गलियों जैसा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सॉल बेलो के 1953 में आए उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ ऑगी मार्च की। बेलो, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
और ये उपन्यास उसकी एक बहुत बड़ी वजह है।
हाँ, इसकी पहली लाइन अमेरिकी साहित्य में अमर हो चुकी है, मैं एक अमेरिकी हूँ, शिकागो में पैदा हुआ।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है।
सही कहा, एक ऐलान। और ये ऐलान एक सवाल खड़ा करता है, एक इंसान अपनी पहचान बनाता कैसे? क्या वो समाज के दिए रास्तों पर चलता है या फिर हर बने बनाए रास्ते को ठुकरा कर अपना रास्ता खुद बनाता है?
और ऑगी मार्च की पूरी जिंदगी मतलब इसी एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। ये कहानी उस दौर की है जब अमेरिका महामंदी से गुजर रहा था और दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था।
तो ऑगी की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है?
नहीं, उसकी लड़ाई उन सब लोगों से है जो उसे प्यार करते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं और अनजाने में ही उसे अपनी मर्जी के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं।
तो एक अच्छी नियति की तलाश में है।
हाँ, एक अ फेट गुड इनफ। पर वो नियति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है।
तो चलिए ऑगी के सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। उसकी दुनिया कैसी थी, वो शिकागो, वो परिवार जिसने उसे घड़ा।
ऑगी का बचपन देखिए किसी शांत घर की तस्वीर जैसा तो बिल्कुल नहीं था। एक गरीब यहूदी परिवार, माँ लगभग अंधी थी, अपने ही ख्यालों में रहती थी।
और एक भाई भी था, है ना?
हाँ, छोटा भाई जॉर्जी जो मानसिक रूप से अक्षम था, लेकिन घर की असली हुकूमत थी दादी लौश के हाथ में।
जो रिश्ते में दादी नहीं थी।
बिल्कुल,
यही मुझे दो अलग अलग ध्रुव नजर आते हैं। एक तरफ दादी लौश की सिखाई दुनियादारी कि जिंदा रहने के लिए चालाक बनो,
और दूसरी तरफ है उसका बड़ा भाई साइमन।
साइमन जिसे गरीबी से सख्त नफरत है, वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
हाँ, वो उस पारंपरिक अमेरिकी सपने का प्रतीक है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, रुतबा हासिल करो।
लेकिन ऑगी इस रास्ते पर कभी चलना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों?
शायद इसलिए क्योंकि वो देख रहा था कि इस रास्ते पर साइमन खुद को खोता जा रहा है। ऑगी के लिए अनुभव पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थे।
और अनुभवों की ये पाठशाला शुरू कहाँ से हुई?
उसकी पहली बड़ी पाठशाला शुरू हुई जब वो विलियम आइनहॉर्न से मिला। आइनहॉर्न एक कमाल का किरदार है, शरीर से अपाहिज, व्हीलचेयर पर, लेकिन उसका दिमाग
एक तेज तर्रार व्यापारी और दार्शनिक का।
जी, वो एक तरह से ऑगी का पहला गुरु बनता है जो उसे शिकागो की सड़कों की असलियत से लेकर इंसानी फितरत के गहरे राज तक सिखाता है।
एक पिता की तरह जिसने सिखाया कि असली ताकत जिसमें नहीं दिमाग में होती है।
बिल्कुल,
और यहीं पे मुझे लगता है उपन्यास का वो केंद्रीय विचार सामने आता है, अपनाया जाना,
अडॉप्शन।
हाँ,
आइनहॉर्न ने ऑगी को बौद्धिक रूप से अपनाया था, अपना शागिर्द बनाया,
और ये ऑगी को मंजूर था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में रनेलिंग परिवार आता है,
एक अमीर और बेऔलाद जोड़ा
जो उसे पूरी तरह से गोद ले लेना चाहता है, उसे अच्छी पढ़ाई, महंगे कपड़े, सब कुछ देते हैं। किसी भी गरीब लड़के के लिए तो ये एक सपना सच होने जैसा है।
हाँ,
पर ऑगी
ऑगी उसे ठुकरा देता है।
इन दोनों अपनाने में ऐसा क्या फर्क था कि एक उसे आजादी जैसा लगा और दूसरा कैद?
बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, आइनहॉर्न ने ऑगी के दिमाग को खुराक दी, उसकी आत्मा को खुला छोड़ दिया,
जबकि रनालिंग परिवार
वो उसे एक खूबसूरत चीज की तरह सजा कर रखना चाहते थे, वो उसकी आत्मा पर कब्जा करना चाहते थे।
मतलब एक सोने का पिंजरा।
हाँ, और ऑगी उस सोने के पिंजरे से उड़ गया। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था जहां उसने आराम के ऊपर अपनी आजादी को चुना।
और अगर रनालिंग परिवार एक सोने का पिंजरा था तो थिया फेंशेल तो एक तूफान थी।
बिल्कुल, एक तूफान जो उसे उड़ाकर ही ले गई।
ऑगी की जिंदगी का शायद सबसे नाटकीय और जुनूनी अध्याय। कौन थी थिया?
थिया फेंशेल, अमीर, बेहद खूबसूरत और उतनी ही जिद्दी और जुनूनी। वो ऑगी से मिलती है और उसे अपने साथ मेक्सिको ले जाती है।
और उसका एक अजीब सा जुनून है।
हाँ, एक जंगली बाज जिसका नाम है कैलिगुला। वो उसे पालकर बड़ी छिपकलियों का शिकार करना सिखाना चाहती है।
ये पूरा मेक्सिको का किस्सा किसी सपने जैसा लगता है ना?
रोमांच और खतरों से भरा हुआ, और इस सपने के केंद्र में है थिया का जुनून। जैसे वो उस बास को काबू करना चाहती है, वैसे ही वो ऑगी को भी
अपने प्यार और अपने सपनों में बांध लेना चाहती है।
बिल्कुल, वो चाहती है कि ऑगी उसके इस भव्य जुनून का एक हिस्सा बन जाए।
ये बास का प्रतीक बहुत शक्तिशाली है, एक जंगली परिंदा जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो तो साफ तौर पर खुद ऑगी की आत्मा का प्रतिबिंब है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
लेकिन यहां मैं थिया को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं देख पाती। क्या वो भी अपनी शर्तों पर एक असाधारण जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर रही थी?
सही बात है, थिया खुद एक किस्म की ऑगी ही थी, बस उसका तरीका अलग था। पर दोनों ही आजाद रूहें एक दूसरे पर हक नहीं जता सकती थीं।
तो जब बास को साधने की कोशिश नाकाम हो जाती है
और थिया का मालिकाना हक ऑगी के लिए असहनीय हो जाता है, तो वो उसे छोड़ देता है।
ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा।
शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल। एक तरफ जुनून, प्यार, रोमांच और दूसरी तरफ एक गुमनाम, अनिश्चित भविष्य। उसने दूसरा रास्ता चुना।
उसने एक पराई कहानी का हीरो बनने से इनकार कर दिया
ताकि वो अपनी कहानी लिख सके, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न हो।
मेक्सिको के इस तूफान के बाद ऑगी दुनिया के एक बड़े तूफान में फंस जाता है, दूसरा विश्व युद्ध।
हाँ, वो मर्चेंट मरीन में भर्ती हो जाता है और यहाँ का एक अनुभव तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
जब उसका जहाज डूब जाता है।
जी, और वो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक छोटी सी लाइफ बोट पर अकेला रह जाता है।
अकेला नहीं, उसके साथ एक और शख्स था।
हाँ, बेट्स नाम का एक सनकी पढ़ा लिखा मैकेनिक। वो लाइफ बोट मानो दुनिया का एक छोटा सा मॉडल बन जाती है।
चारों तरफ मौत और बीच में दो इंसान।
और बेट्स वहां बैठकर इंसानियत और जिंदगी के बेमतलब होने पर लंबे लंबे भाषण देता है। पहली बार ऑगी का सामना मौत और अस्तित्व के खालीपन से इतने करीब से होता है।
समाज के सारे नकाब, सारी पहचान उस छोटी सी नाव पर बेमानी हो जाती है।
वहां सिर्फ एक नग्न सच्चाई बचती है, जिंदा रहने की जद्दोजहद।
ये अनुभव ऑगी को अंदर तक बदल देता है। और यहीं हम उपन्यास के सबसे गहरे दार्शनिक सवाल पर आते हैं। उपन्यास में बार बार एक यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस का जिक्र आता है।
मनुष्य का चरित्र ही उसकी नियति है।
ये बात तो अमरीकी सोच के एकदम खिलाफ है ना? अमेरिका का तो पूरा विचार ही इस पर टिका है कि आप अपनी नियति खुद बनाते हैं।
सही का।
तो सवाल यह है कि क्या ऑगी सच में आजाद है, या वो बस अपने बेचैन चरित्र का गुलाम है जो उसे कहीं टिकने ही नहीं देता?
ये इस उपन्यास का सबसे बड़ा तनाव है। एक तरफ ऑगी का ये विश्वास कि वो अपनी जिंदगी चुनेगा,
और दूसरी तरफ ये एहसास कि शायद उसका चरित्र ही उसे चुनने पर मजबूर कर रहा है।
उसका भाई साइमन एक रास्ता चुनता है और उस पर चलकर अमीर बन जाता है। ऑगी कोई रास्ता नहीं चुनता और शायद यही उसका रास्ता है।
और बैलों की भाषा इस दुविधा को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है।
हाँ, वो एक ही पैराग्राफ में ऊंचे दर्जे के फलसफे और शिकागो की सड़कों की आम बोलचाल वाली भाषा को ऐसे मिला देते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं।
तो इस अंतहीन सफर का अंत कैसे होता है? क्या ऑगी को आखिरकार वो अच्छी नियति मिलती है?
इस कहानी का कोई पारंपरिक अंत है ही नहीं,
क्योंकि ऑगी की जिंदगी का सफर ही उसकी मंजिल है।
बिल्कुल। युद्ध के बाद वो अपनी प्रेमिका स्टेला से शादी करता है, जो खुद उसकी तरह एक भटकी हुई आत्मा है। वो पेरिस में बस जाते हैं
और वहां भी वो भाग दौड़ में ही लगा रहता है।
हाँ, कहानी के आखिरी पन्नों में भी वो गति में है और भविष्य की अनिश्चितताओं पर हंस रहा है। उसे कोई खजाना नहीं मिला, कोई बड़ा पद नहीं मिला,
लेकिन वो अपनी फ्री स्टाइल भावना के प्रति सच्चा रहा है।
उसने किसी और को अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का हक नहीं दिया।
तो शायद ये कहानी यही सिखाती है कि जीवन का अर्थ किसी बनी बनाई मंजिल पर पहुंचने में नहीं है,
बल्कि उस सफर को अपनी शर्तों पर अपनी आजाद आत्मा के साथ जीने में है, चाहे वो सफर कितना ही बेतरतीब क्यों ना हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।